عباده الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. ठीक है, सबने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, अल्लाह ताला से दुआ भी मांग ली कि अल्लाह ताला हमें सही बात बताइए और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाइए और जो गलत चीज़ है उसकी भी समझ अता फरमाइए ताकि हम उससे बच सकें. ठीक है, और अल्लाह ताला हमारे इल्म के अंदर इजाफा फरमाइए. अच्छा, तो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम आखिरी बात जो कर रहे थे वो क्या थी जी? हो गया था कुरैश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एग्रीमेंट. आप बताइए क्या चीज? सूरह फतह नाजिल हो गई थी, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना. उसके ऊपर क्या सवाल किया था उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने? हाँ, ये वाक्य भी हमने पढ़ लिया था कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब लोगों से कह दिया कि अपने कुर्बानी के जानवर कुर्बान कर दो और सर के बाल मुंडा लो, तो सब के सब बिल्कुल बैठे हुए थे खामोश, समझ भी नहीं आ रहा था. आपने हमजा आपने भी पहले हाथ उठाया था, यही बात कर रहे थे. आप कुछ और कह रहे थे? हाँ, कि क्या ये फतह है, ये मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि फतह ऐसी होती है कि हम जो है वो इतना दब करके और हमने ऐसी ऐसी बातों पे उनसे एग्री कर लिया है कि जो कि उनके हक में जाती हैं, हमारे हक में तो नहीं जाती. लेकिन उमर रतानों को फिर बाद में बात समझ में आ गई थी और उन्होंने फिर बहुत तौबा इस्तगफार करी थी, कफारे अदा किए थे, गुलाम आजाद किए थे, नमाजें पढ़ी थी, रोजे रखे थे. अल्लाह ताला मेरे इस गलती को माफ फरमा दीजिए. ठीक है, तो ये सब कुछ पढ़ करके हम, अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमने डिस्कस करी थी कि जो सहाबा कराम बिल्कुल ऐसे बैठे हुए थे ना और नबी अलैहिस्सलाम की बात को वो नहीं, यानी उस पर अमल नहीं कर रहे थे, तो इसकी वजह भी जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम की नाफरमानी बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि इसकी वजह भी मोहब्बत ही थी. क्योंकि इस्लाम की इज्जत जो है वो बज़ाहिर नजर आ रहा था जैसे कम हो गई, और इस्लाम क्या था? वही सब कुछ जो नबी अलैहिस्सलाम ने बताया, राइट? इस्लाम क्या है? जो नबी अलैहिस्सलाम ने बताया वही तो इस्लाम है. तो गोया कि इस्लाम की इज्जत कम होने का मतलब यह है कि नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत जो है वो कम हो रही थी और ये सहाबा कराम से बर्दाश्त नहीं था. जैसे हमारे सामने अगर नाउज़ बिल्ला सुम्मा नाउज़ बिल्ला कोई हमारे अब्बू की जो है वो बेइज्जती कर दे, हमारी अम्मी की कोई बेइज्जती कर दे, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, ये कैसे हो, है ना? और उस वक्त फिर अगर अम्मी भी हमें कोई हुक्म देना करने के लिए उस बंदे के साथ, नहीं नहीं अम्मी मैं आपकी ये वाली बात नहीं मान सकता, ठीक है ना? क्योंकि उन्होंने तो आपकी बेइज्जती करी है, मैं कैसे आपकी बात नहीं मान लूं? ठीक है, उसी तरीके से सहाबा कराम ने नबी अलैहिस्सलाम की बात भी सिर्फ इसलिए नहीं मानी थी क्योंकि इसमें नबी अलैहिस्सलाम की खुद जो है ना वो शान उनको नजर आ रहा था कि घटती भी है, लेकिन उनको सारी चीजों का तो नहीं पता था ना कि असल में क्या हो रहा है, असल में अल्लाह ताला के इसके अंदर क्या प्लान है और मुसलमानों के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है. बहरहाल, तो ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी, लेकिन इसके बाद जो है ना एक और वाकया भी हुआ, मिलता जुलता एक और वाकया जो पहले हो चुका था. वो क्या था कि एक सहाबी थे हजरत जुंदल रजी अल्लाह अन्हु. ठीक है, नहीं पढ़ो, क्या नाम था, क्या नाम था उनका, वो जो अबू जुंदल, हाँ, सुहेल बिन अम्र, जो के एग्रीमेंट लिख रहा था नबी अलैहिस्सलाम के साथ और उसी के बेटे थे अबू जुंदल रजी अल्लाह अन्हु. अब वो आ गए थे और नबी अलैहिस्सलाम ने कोशिश तो बड़ी करी थी कि वो रुक जाए और सुहेल जो है ना वो उनको छोड़ दे, लेकिन सुहेल नहीं माना था. ठीक है, तो अबू जुंदल को जो है वो वापस भेज दिया था और वापस जाकर के फिर वही सुहेल और बाकी कुफार ने अबू जुंदल को दोबारा से बांध दिया था. ठीक है, अच्छा, इसी तरह का एक और वाकया हुआ कि एक और जो है ना वो सहाबी थे, वो मदीना मुनव्वरा पहुंच गए. बाद में ना वो भी मक्का मुकरमा से भाग करके, अबू बसीर उनका नाम था, वो भी मुसलमान हो गए थे और काफिरों को पता चल गया था, तो काफिरों ने उनको भी जो है ना वो तकलीफें अजियतें पहुंचानी शुरू कर दी थी और उनको जो है कैद कर दिया था, लेकिन वो भी किसी तरीके से कैद से फरार होकर के मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। जी, अबू बसीर, सौद से बसीर। ठीक है, तो काफिरों को जैसे ही पता चला कि वो भाग गए, तो उन्होंने ना दो बंदे उनके पीछे रवाना कर दिए। तो ये मदीना मुनव्वरा पहुंच गए नबी अलैहिस्सलाम के पास, और पीछे पीछे जो है वो दो बंदे भी कुफार के पहुंच गए अलैहिस्सलाम के पास। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बसीर को उन दो बंदों के हवाले कर दिया कि अबू बसीर, मैं अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, हम वादा कर चुके हैं कि जो कोई वहां से भाग करके अपने आका की या अपने वली की इजाजत के बगैर आ जाएगा ना, तो मुसलमान उसको वापस कर देंगे, तो मैं आपको वापस करता हूँ, तो आप जो है ना वो वापस चले जाएं। तो अबू बसीर ने बहुत कहा कि मुझे जो है वो ये लोग बहुत सताते हैं, तकलीफें देते हैं, तो आप मुझे वापस ना करें। तो आपसे सुन फरमाया कि अबू बसीर, तुम सब्र करो, ठीक है ना, तुम सब्र करो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए ना कोई सूरत पैदा कर देंगे, कोई तरीका पैदा कर देंगे निजात का, कि तुम जो है वो वहां से निकल जाओगे। ठीक है, तो अबू बसीर जो है वो क्या उनकी हालत होगी कि मुझे वापस ले जाया जा रहा है, हालांकि मैं आजाद होके आ चुका था, और है? लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने हुक्म मान लिया। अब वो दोनों आदमी जो है ना वो अबू बसीर को लेकर के वापस रवाना हुए। तो मक्का मुकरमा के रास्ते में जब हम भी उमरा करने के लिए जाते हैं मदीना मुनव्वरा से, तो सबसे पहले जो पॉइंट पड़ता है जहां पे जाकर हम सब एहराम बांधते हैं, वहां से नियत करते हैं, मस्जिद बहुत बड़ी बनी हुई है, जुलहुलैफा का मुकाम, ठीक है, जुलहुलैफा जो है वो मदीना मुनव्वरा वालों के लिए मीकात भी है, कि यहाँ से आके आप बगैर एहराम के नहीं जा सकते अगर आपकी उम्रा करने की नीयत हो। तो ये लोग ना जुलहुलैफा के मकाम पे पहुंचे, और वहां पे थोड़ी देर के लिए उन्होंने रेस्ट किया, वहां पे जरा खजूर के बागात वगैरह भी आपने देखे हैं, तो ऐसी मकाम पे फिर लोग रेस्ट करते हैं अपने सफर के अंदर। तो जब ये लोग रेस्ट कर रहे थे, अबू बसीर जो है ना वो वहीं पे थे, तो उनमें से एक जो है ना उसके पास थी बड़ी जबरदस्त किस्म की तलवार, तो उसने जो है ना वो हाँ खजूर खाने शुरू कर दिए उन्होंने। तो अबू बसीर ने उस बंदे से कहा जिसकी तलवार थी कि यार तुम्हारी तलवार तो बड़ी जबरदस्त है, नहीं? तो वो कहने लगा हाँ वाकई मेरी तलवार तो बड़ी जबरदस्त है, और जो है ना वो ऐसे ऐसे करके ना अपनी तलवार को दिखाने लगा। तो अबू बसीर ने उससे कहा कि जरा दिखाओ तो, जैसे कहते हैं ना कि हाँ भाई तुम्हारी तो क्या जबरदस्त तुम्हारा, ठीक है, तो जरा दिखाओ तो। तो अब वो साहब जो है ना वो पेट पूजा में मसरूफ जो हो जाता है ना, तो फिर उसके साथ यही होता है, वो पेट पूजा में मसरूफ थे, खजूर खाए चले जा रहे थे, तो अब शायद नींद वींद भी आई हुई होगी उनको, तो उन्होंने जो है ना वो अबू बसीर को अपनी तलवार पकड़ा दी। ठीक है, अबू बसीर के हाथ में जैसे ही तलवार आई ना, उन्होंने कड़क करके जो है ना वो उसकी तो काम ही तमाम कर दिया उस बंदे का। ठीक है, अब जब दूसरे उसके जो साथी था उसने देखा कि मेरा दोस्त तो जो है वो मारा गया है, वो जो है ना वहां से भागा, और भाग करके जो है ना वो सीधा नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, और अबू बसीर भी जो है वो वापस नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। ठीक है, तो वहां पे पहुंच करके उस बंदे ने कहा कि भाई अबू बसीर ने तो मार दिया मेरे बंदे को, मेरे साथी को, और आप जो है ना वो उसको फिर वापस करें मेरे पास, वो फिर आपके पास आ गया है। तो नबी अलैहिस्सलाम से अबू बसीर ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम देखें, आपने तो अपना वादा पूरा कर लिया था ना, ठीक है, तो आपका वादा पूरा हो गया, आपने मुझे इन लोगों के साथ वापस भेज दिया था, अब जो है ना मैं तो खुद से यहाँ पे आया हूँ, ठीक है ना, तो अब आप मुझे वापस ना करें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त भी ना अबू बसीर की बात नहीं मानी, और आप ने फरमाया कि ये एक जुमला कहा, जरा देखते ना थर्ड पर्सन में, डायरेक्टली अबू बसीर को नहीं कहा कि तुम बड़े ही बुरे आदमी हो, तुम बड़े ही ऐसे आदमी हो, ठीक है ना, बल्कि एक थर्ड पर्सन के तरीके से कहा कि ये बड़ा ही जो है ना लड़ाई भड़काने वाला बंदा है, ये बड़ा ही लड़ाई भड़काने वाला है, तो इसके साथ अगर कोई मिल जाए ना तो ये तो बड़ा ही जो है ना वो लड़ाई भड़का देगा, यानी लड़ाई बन जाएगी, यानी एक पीस एग्रीमेंट हो चुका है हमारा, ठीक है ना, तो उसको पीस ही रहने दो, ताकि हम पीस के साथ अमन के साथ जो है वो अपना काम कर सकें, तो भाई लड़ाई ना भड़काओ, सही है। तो इस तरह का ना नबी अलैहिस्सलाम ने एक कमेंट दे दिया। ठीक है, तो अबू बसीर जो है वो इस बात को सुनकर के समझ गए कि नबी अलैहिस्सलाम जो है ना वो बिल्कुल तैयार नहीं है, और होगी इसके अंदर कोई अल्लाह की हिकमत होगी, जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कर रहे हैं, तो अबू बसीर जो है ना वो वहां से फिर भाग गए। ठीक है, और भाग करके जो है ना ये पहुंच गए रेड सी का जो साहिल है ना, जैसे हो सकता है वो यम्बो का इलाका हो, यम्बो का जो है, और कौन किसी जगह है वहां पे बड़ी मशहूर, एक तो काउस जहां पर है, खैर हाँ जद्दा, जद्दा से थोड़ा सा और नॉर्थ चले जाएं, मदीना मुनव्वरा से अगर आप निकले ना और आप यहाँ पे साहिल पर चले जाएं, जद्दा तो बहुत नीचे जाकर के आता है, ठीक है। तो ऐसी किसी जगह पे पहुंच गए कि जो कि साहिल समंदर पर थी, ठीक है, और वो जो था ना वो ट्रैवल रूट भी था कि जब मक्का मुकरमा से काफले शाम की तरफ जाते थे ना अपना सामान बेचने के लिए, तो वो इसी ट्रैवल रूट से गुजरते थे समंदर के साथ साथ, ठीक है। तो ये वहां पे जाकर के रहने लगे, और फिर इनके वहां पे रहने का जो है वो खबर फैल गई, मक्का मुकरमा तक इसी खबर फैल गई कि भी अबू बसीर जो है ना वो भाग करके यहाँ पे आकर के रह गए, रहना शुरू हो गए, ठीक है। तो जिसको भी मक्का मुकरमा के अंदर मौका मिलता था कि वो मुसलमान हुआ होता था, और वो जो है वो काफिरों की तकलीफों से और परेशानियों से जो है वो अजियत में था और वो निकलना चाहता था ना, तो उसको पता था कि अगर मैं मदीना मुनव्वरा जाऊंगा तो नबी अलैहिस्सलाम मुझे वापस कर देंगे, क्योंकि वो एग्रीमेंट कर चुके हैं, और वादा तो नबी अलैहिस्सलाम तोड़ नहीं सकते, अल्लाह के नबी हैं, ठीक है ना। सच बोलना और वादे की पास रखना ये तो जरूरी है नबी अलैहिस्सलाम के लिए। तो ऐसे लोगों ने क्या करना शुरू किया कि ये सारे के सारे जो है ना वो भाग करके अबू बसीर के साथ जाके रहना शुरू हो गए, ठीक है। अब ये लोग वहां पे रहना शुरू हो गए, और एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, पढ़ते बढ़ते ये एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया, ठीक है, 50, 60, 70 लोगों का ग्रुप बन गया ये गोया के, ठीक है। अब ये लोगों ने क्या किया कि जो कुफार के ये लोग मुशरिक, ये कुरैश मक्का के काफिले शाम की तरफ जाते थे ना, तो ये उनके ऊपर हमला कर देते थे और उनकी चीजों को जो है ना वो उनसे छीन करके फिर अपना इनका काम चलता था, खाने पीने की चीजें इनकी ऐसी होती थी, ऐसी इनको गुजारा चल रहा होता था, क्योंकि वहां पे और कोई जरिया तो था भी नहीं इनका, ठीक है। जब ये चीज जो है वो बहुत अच्छा, वो जो अबू जुंदल थे ना उनको भी जब खबर मिली वो भी फिर भाग करके अबू बसीर के साथ आकर के मिल गए, ठीक है। अब ये जो है वो सिलसिला शुरू हो गया। हाँ राबे जी मेरे जहन में नहीं आ रहा था, तो यम्बो राबे इस तरह के सिटीज जो है ना ये इसके ऊपर है, रेड सी के शोर पे। अच्छा कुफारे मक्का को बड़ी परेशानी, यार ये क्या मुसीबत है ना, ये तो उल्टी मुसीबत हमारे ऊपर आ गई है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो ये ना ये हमें कुछ करना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फिर अपने बंदे भेजने चाहिए कि भाई अबू बसीर ने तो हमारा बंदा भी मार दिया, और ये जो हो रहा है तो ये तो बड़ा गलत हो रहा है। तो अबू सुफियान जो थे ना, जो कि उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान नहीं हुए थे, तो उन्होंने जो है ना कहा कि ये जो अबू बसीर ने बंदा मारा है ना, तुम इसके ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दियत वसूल नहीं कर सकते, दियत डिमांड नहीं कर सकते। दियत क्या होती है? वो पैसा होता है जो कि किसी के कत्ल के बदले में आप उसके खानदान वालों से रिसीव करते हैं, ठीक है। जैसे पहले भी हम पढ़ चुके हैं नबी अलैहि सलाम दियत के लिए वो काफिरों, वो यहूदियों के ट्राइब के पास गए थे ना, सारा वाक्य हमने पढ़ा था। तो अबू सुफियान ने कहा कि नहीं, ये जो अबू बसीर ने हमारे बंदे को मारा है ना, तो इसकी हम दियत जो है वो डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपना वादा पूरा कर दिया था। जी सर, लाइफ इंश्योरेंस नहीं, लाइफ इंश्योरेंस उसको नहीं कहते हैं, इंश्योरेंस डिफरेंट चीज होती है। दियत के लिए वर्ड क्या कहते हैं? ब्लड मनी। हाँ ब्लड मनी। तो उसने कहा कि आपसे उसने अपना वादा पूरा कर दिया है, और अबू बसीर को जो है ना वो तुम्हारे कासिद के हवाले कर दिया था। तो अबू बसीर ने जो कत्ल किया उस बंदे को, नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म पे थोड़ी कत्ल किया था उसने, तो अपना एक जिसको विजिलेंटिज्म कहते हैं है ना, अपने तौर पे आपने जो है वो किसी को फाइट करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, तो इस वजह से जो है ना वो अबू बसीर से, आप नबी अलैहिस्सलाम से अबू बसीर को के इस कत्ल के बदले में दिया तो वसूल नहीं कर सकते, और आप अबू बसीर के फैमिली वालों से भी दियत वसूल नहीं कर सकते, क्योंकि होता क्या है कि जिसने कत्ल किया हो तो या तो उससे खुद ये दियत का पैसा वसूल किया जाता है कि तुमने जो कत्ल किया है तो पैसा दो उसके बदले में, ठीक है, अगर फैमिली वाले मकतूल के फैमिली वाले राजी हो जाए, जिसको कत्ल किया था उसने वो राजी हो जाए कि ठीक है हम कत्ल के बदले कत्ल नहीं करते बल्कि हम उससे पैसे ले लेते हैं, पैसे लेकर के उसको छोड़ देंगे। तो मकतूल की फैमिली वालों को फिर कौन पैसा देगा? कातिल पैसा देगा। अगर कातिल पैसा नहीं दे सकता, उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो फिर कातिल की फैमिली पैसा देगी। ठीक है, तो अबू सुफियान ने कहा कि तुम अबू बसीर की फैमिली से भी डिमांड नहीं कर सकते दिया, इसलिए कि अबू बसीर तो उनके दीन पर ही नहीं है, वो तो उसे एग्री नहीं करते, उसको सपोर्ट ही नहीं करते। ठीक है, तो अल्लाह ताला ना इस तरीके से अबू सुफियान, जो कि उस मुसलमान भी नहीं हुए थे, उनके दिल में यह बात डाल दी और मसला हल हो गया। ठीक है, अल्लाह ताला इस तरह से मसले हल करवा देते हैं, काफिरों के दुश्मनों के दिल के अंदर ही कोई ऐसी बात डाल देते हैं कि वो खुद ही मसला सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो बहरहाल अब जो है ना, वो मुशरिकीन ने मक्का ने नबी अलैहिस्सलाम के पास मैसेंजर्स भेजे कि आप जो है ना अल्लाह के वास्ते अबू बसीर को और अबू जुंदल को जो है ना वो अपने पास बुला लें। ठीक है, और ये जो सारे लोग हैं ना जो कि हमारे काफिलों को लूट रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। अल्लाह के वास्ते और हमारी आपसे जो रिश्तेदारी है ना, ब्लड टाइज तो है ना भाई, आप हमारे कुरैश के बंदे हैं और कराबतदारी का रिश्ता तो है ना, इसके वास्ते ना आप अबू बसीर, अबू जुंदल और इनके सारे जो साथी हैं ना, उनको मदीना मुनव्वरा बुला लें, ताकि वो कम से कम एक सिस्टम के तहत तो आ जाए ना। आपकी जो रियासत मदीना मुनव्वरा है, ठीक है ना, आपका वहां पे रूल चलता है, आपका हुक्म चलता है, आपके लोग बात मानते हैं, ये उस सिस्टम में आ जाएंगे ना तो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि वो इंडिपेंडेंटली वहां पे बैठ करके लोगों को लूट रहे हैं। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर एक लेटर लिख करके अबू बसीर के नाम भेजा। ठीक है, और वो लेटर लेकर के जो मैसेंजर नबी अलैहिस्सलाम का जब अबू बसीर के पास पहुंचा ना, तो अबू बसीर उस वक्त जो है वो शदीद बीमार हो चुके थे। ठीक है ना, साहिल के इलाके में ऐसी आबो हवा होती है जिसके वो लोग आदि भी नहीं थे, रह रह करके ना उनकी तबीयतें बहुत खराब हो गई थी, और अबू बसीर जो है वो उस वक्त बिल्कुल अपने डेथ बेड पर थे, मौत के करीब थे। नबी अलैहिस्सलाम का खत जब उनको मिला ना, तो वो लेटे लेटे उन्होंने उस खत को पढ़ना शुरू किया और खुश हो जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत, ओ मेरे नाम खत आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, राइट, इतना खुश हुए, इतना खुश हुए। लेकिन खत पढ़ते पढ़ते अल्लाह ताला ने उनकी जान निकलवा दी। ठीक है, और उनका खत जो है ना वो नबी रसूल का खत उनके ऊपर आकर गिर गया। ठीक है ना, ये वाकया जो है ये हमने सबसे पहले अपने हजरत जी के बयान में सुना था। ठीक है ना, एक बड़ा ही पावरफुल बयान था जो कि हजरत ने अमरीका आकर के हमारे इलाके में जहाँ पे हम रहते थे वहां पे बयान किया था। ठीक है, और इसमें कैसे कैसे हमारे बुजुर्गों ने ना इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी हैं अपनी जानों की, है ना, कैसे कैसे कुर्बानियां दी हैं। तो हजरत ने ये वाकया बयान, जैसे कोई वाकया बयान करते थे कि ऐसे कुर्बानी दी, और उसके आखिर में कहते थे अल्लज़ीना युमस्कुना बिल किताब, अल्लज़ीना युमस्कुना बिल किताब। ये वो लोग थे कि जिन्होंने अल्लाह की किताब को जो है ना वो मजबूती से पकड़े रखा, मजबूती से पकड़े रखा। ठीक है ना, और ऐसे उन्होंने उसकी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी थी। तो अबू बसीर का वाकया सुनाते हुए भी हजरत जी ने यही पढ़ा था, तो मेरे कानों में बजता रहता है ये वक्त। और कुदरतन जब इसकी रिकॉर्डिंग हम ही प्रोसेस करते थे, हम इसकी सीढ़ियां बनाते थे, उसकी कैसेट बनाते थे, तो शायद उसने फिर इस बयान का नाम ही फिर ये रख दिया था, अल्लज़ीना युमस्कुना बिल किताब। ठीक है, अल्लज़ीना युमस्कुना बिल किताब व इकाम सलात इन अल्लाह ला युदीउ अजर अजर मुहसिनीन। अल्लाह ताला जो एहसान करने वाले, नेकी करने वाले लोग होते हैं ना, उनकी नेकियों को जाया नहीं फरमाते। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये मामला खत्म हुआ, और काफिरों ने ना नबी अलैहिस्सलाम को ये भी कह दिया इस मौके पर कि अगर कोई मुसलमान होकर हमारा बंदा जाता भी है ना मदीना मुनव्वरा, हमें नहीं चाहिए वो। ठीक है ना, रखें आप उसको अपने पास ही। ठीक है, तो ये थी वो चेंज के काफिरों ने खुद अपनी मर्जी से इस वाले जो पॉइंट को ना एग्रीमेंट से बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब कोई यहां से मुसलमान होकर के अगर मदीना मुनव्वरा जाएगा तो हमें नहीं चाहिए वो बंदा, वापस नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो ये फिर उस सवाल का जवाब भी बन गया जो कि आप में से किसी ने आखिरी क्लास में पूछा था, क्या तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु जो है और दूसरे मुसलमान होकर के जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको वापस क्यों नहीं किया? क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया कि काफिरों ने खुद ही इस बात को खत्म कर दिया। ठीक है, बहरहाल तो अब ये मामला फिर अच्छा, इसके अंदर फिर एक और चीज आखिरी रह गई है सुलह हुदैबिया से रिलेटेड, वो ये कि ना कुछ दिनों के बाद जो है ना कुछ औरतें जो कि मुसलमान हो चुकी थीं लेकिन मक्का मुकरमा से अभी तक हिजरत नहीं कर सकी थी ना, तो वो भाग करके मदीना मुनव्वरा पहुंची, कुछ औरतें, ठीक है। अब काफिरों ने जो है वो पीछे से फिर वही अपने रिप्रेजेंटेटिव से भेजे कि भाई इन औरतों को भी वापस करो, ये भी मुसलमान होकर के आ गई हैं। अच्छा, ये जाहिर है इससे पहले हुआ था, अबू बसीर वाले वाक़े से पहले। तो जब औरतों के लिए काफिरों के लोग आए ना वापस लेने के लिए, तो उस वक्त जो है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयतें नाजिल फरमा दी मोमिन औरतों के लिए, मोमिन औरतों के लिए, ठीक है ना, कि ये जो औरतें हैं ना इनको आपने वापस नहीं करना, ठीक है ना, इन औरतों को वापस नहीं करना है। फरमाया, या अय्युहल लजीना आमनू, ए ईमान वालों, इजा जाअकुमुल मुमिनातु मुहाजिरातिन, ठीक है ना, जब आपके पास मुमिनात हिजरत करके पहुंचे ना, फम्तहिनूहुन्ना, ठीक है, तो आप उनकी जरा क्विज कर लें, उनसे जरा पूछ पवाछ लें कि क्या वाकई वो ईमान लेकर के आई हैं और फिर ईमान वाली होकर के यहाँ पर आई हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ना उनको जरा टेस्ट कर लें कि वाकई वो मुसलमान होकर के आई है ना। अल्लाह आलमु बे ईमानहिम, अल्लाह ताला तो जानते ही उनके ईमान के बारे में कि है कि नहीं है, आप ऊपर ऊपर से टेस्ट कर लें जरा, ठीक है, कि वाकई मुसलमान हो गई हैं, ठीक है, और इनको जो है ना आपने वापस नहीं करना है, ठीक है। तो उस वक्त फिर अल्लाह ताला ने एक तो ये आयत नाजिल फरमाई, और दूसरा ये कि नबी अलैहिस्सलाम के दिल में एक और भी बात डाल दी, एक पॉइंट डाल दिया। वो पॉइंट क्या था कि सुलह हुदैबिया के अंदर जो तुम लोगों ने लिखा था ना, जो हम लोगों ने जिस पर साइन किया है, वो एग्रीमेंट जो था ना उसके अंदर लफ्ज था रजुल, रजुल का लफ्ज इस्तेमाल किया था हमने, ठीक है ना, और रजुल का लफ्ज जो है ना ये अरबी जुबान के अंदर औरतों में इस्तेमाल ही नहीं हो सकता, औरतों के लिए यूज ही नहीं कर सकते, इस वजह से औरतें तो हमारे एग्रीमेंट में दाखिल ही नहीं थी, ठीक है ना, तो यू कैन नॉट डिमांड देम टू बी सेंट बैक, ठीक है, वरना कुरान की आयत को काफिरों ने थोड़ी मानना था, ये तो नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म आया ना कुरान मजीद का कि भाई आप इसको वापस नहीं करेंगे, काफिरों के लिए अल्लाह ताला ने ये नुक्ता दिल में डाल दिया, ठीक है ना, और मुसलमानों ने कहा, और उन्होंने कहा हम भी डिडंट हैव एन आंसर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है, अरबी जुबान तो वो सभी जानते थे। अच्छा, तो ये फिर सुलह हुदैबिया का सिलसिला इस क्लास में हमने मुकम्मल किया, कोई सवाल या कम जी?
आपने कहा था हमारे यहाँ दुनिया
वायदा बाद में फिर टूटा था, वो अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे, ठीक है। अच्छा, अब जब ये मुआहिदा हो गया है तो इसके बाद फिर ना वो जंग वाली जो सूरत हाल थी, सिचुएशन थी ना, वो खत्म हो गई कि अब कभी मतलब तो काफिर अटैक करने के लिए प्लानिंग करना, ये सारे मसला खत्म हो गया और पीस का एक दौर जो है वो शुरू हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा वाला साल था, ये साल कौन सा चल रहा था, 6th हिजरी, ठीक है, छठी हिजरी ये चल रहा था। तो छठी हिजरी का सबसे मेजर वाकया जो है ये बना, और फिर इस छठी हिजरी के आखिर में जब ये साल खत्म होने वाला था, जिलहज्जा का महीना, आखिरी महीना होता है ना साल का, तो उसमें ना फिर नबी अलैहिस्सलाम ने लेटर्स लिखने शुरू किए, लेटर्स खतूत, किन के नाम, बादशाहों के नाम, बड़े बड़े जो जो उस वक्त की सुपर पावर्स कौन सी थी, सुपर पावर्स रोमन्स एंड पर्शियंस, है ना, रोमी थे ये यूरोप की साइड के ऊपर जो कि टर्की से बेसिकली शुरू हो जाता है, और पर्शियंस जो थे ये इराक के जो फर्दर ईस्ट जो ईरान का इलाका आता है, ये सारा का सारा पर्शियन एम्पायर था, ठीक है, सबसे बड़ी सुपर पावर्स तो जमाने की यही दोनों थी, और उसके अलावा और भी बहुत सारे बादशाह थे जैसे बहरीन का यमन के अंदर, और उसके अलावा मुख्तलिफ और जगहों पे, तो उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो जिक्र किया है और सबसे इंपॉर्टेंट उस वक्त और आज भी सबसे इंपॉर्टेंट जो किंगडम दुनिया के अंदर रही है वो नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट किंगडम जो दुनिया के अंदर रही है ना वो हमेशा से रोमन एम्पायर रही है, ठीक है ना, ये रोमन जो है ना ये कल भी मुसीबत थे आज भी मुसीबत है, ठीक है, और ये हमेशा मुसीबत रहेंगे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाए कि रोमी जो है ना मुझे सबसे ज्यादा जो खौफ है ना अपनी उम्मत के बारे में, ये रोमियों से, ठीक है ना, बाकी तो मरमरा के खत्म हो जाते हैं, हफ्शा का जो है वो खत्म हो गया, और जो पर्शियन एम्पायर खत्म हो गई, यमन की जो है वो खत्म हो गई, सारी जगह खत्म हो गई, ठीक है ना, लेकिन ये रोमन ना उस वक्त खत्म हुए ना आज खत्म हुए, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर खत लिखवाने, अच्छा खुद तो नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख सकते थे, इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो खत लिखवाने शुरू किए। तो जब सहाबा कराम को पता चला ना कि नबी अलैहिस्सलाम इस तरीके से खतूत लिखवा रहे हैं, तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को, जो जानने वाले थे जो ट्रैवल करते रहते थे इन बादशाहों के दरबारों के अंदर, उन्होंने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम ये जो बादशाह लोग हैं ना ये बड़े, यानी इनके यहाँ जो है ना वो फॉर्मेलिटीज बड़ी होती हैं, ठीक है, तो इनके यहाँ कुछ उसूल कवायद होते हैं इवन खतूत के बारे में, ये हर खत को जो है ना वो भाष नहीं डालते, हर खत को जो है इंपॉर्टेंस नहीं देते, ठीक है। जब तक उस खत के ऊपर वो खत जो है ना बाकायदा सील्ड ना हो, उसके ऊपर कोई स्टैंप ना लगी हुई हो, ठीक है, तब जो है ना ये उस खत को खोलते हैं, वरना खोलते ही नहीं है खत को, ठीक है। तो पता नहीं किसने खत लिख दिया, हमारे का खत को थोड़ी खोल सकते हैं, हम तो बादशाह लोग हैं, हमारे पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है। तो सहाबा कराम के मशवरे के ऊपर फिर नबी अलैहिस्सलाम ने बाकायदा अपनी सील बनाई, खत्म नबूवत। ये वो वाली खत्म नबूवत नहीं है कि आखिरी नबी, बल्कि खत्म यानी जिसको के सील कहते हैं, ठीक है, मोहर स्टैंप। और ये स्टैंप कैसी बनवाई, ये स्टैंप जो है वो अपने नाम के साथ जैसे हम सिग्नेचर करते हैं ना, उसी तरीके नबी अलैहिस्सलाम ने,
कोई
हाँ, तो वो जो पहले तो उसका जो इम्प्रेशन बनाया ना, जो उसका इमेज बनवाया, और फिर अंगूठी के ऊपर उसको लगवाया, ठीक है। वो कैसा था कि नबी अलैहिस्सलाम उस पर लिखवाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद के ऊपर रसूल, उसके ऊपर अल्लाह, ठीक है, यानी ऊपर से शुरू हो रहा है अल्लाह, नीचे रसूल, नीचे अपना नाम मोहम्मद, मोहम्मद और रसूलुल्लाह, ठीक है। देखें अदब का कैसे ख्याल रखा, सबसे बड़े अल्लाह ताला हैं, तो अल्लाह ताला का नाम भी स्टैम्प के अंदर सबसे ऊपर रखा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अल्लाह ताला का रसूल, जितने रसूल आए, सिर्फ मैं कोई थोड़ी रसूल हूँ, नबी रसूल मैं कोई थोड़ी खाली रसूल हूँ, रसूल तो नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, तो रसूलों का सिलसिला जो है ना ये असल है, और आखिर में मेरी जात आती है, माई पर्सनैलिटी, माई पर्सन, ठीक है ना। तो मेरा नाम जो है वो सबसे नीचे होगा, ठीक है, लेकिन पढ़ने वाला जब पढ़ेगा तो नीचे से पढ़ना शुरू करें, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है, इस तरीके से। तो ये गोया कि एक इमेज बन गया, और इसके इमेजेस आपने देखी भी होंगे इंटरनेट के ऊपर भी बहुत पड़े रहते हैं, इसकी तस्वीर वगैरह। तो उसको फिर अपनी अपनी एक अंगूठी थी, उस अंगूठी के ऊपर उसको जो है ना वो इम्प्रिंट करवा दिया। तो जब किसी खत के ऊपर स्टैम्प करनी होती थी, तो नबी सल्लल्लाहु अपनी अंगूठी से इस तरीके से उसके ऊपर स्टैम्प कर देते थे, और वो जो लेटर्स थे वो लेटर्स ऐसे उभरे हुए होते थे कि उससे जो है ना जैसे किसी इंक तरह की चीज के ऊपर जब उसको आपने गीला कर लिया, तो ऐसे करके जब आप उसको प्रेस कर देंगे तो फिर नीचे एक उसकी शक्ल बन जाएगी, उसका इमेज बन जाएगा कागज के ऊपर,
वैक्स
वैक्स के जरिए से। वैक्स को तो वो तो लाइक पिघला करके, यानी कागज के ऊपर डायरेक्टली नहीं, बल्कि जो पिघला हुआ वैक्स होता था ना, उससे जो है वो कागज को बंद करते थे, ठीक है, और वो पिघले हुए वैक्स के ऊपर जब ये वाले लेटर्स ऐसे करते थे ना, तो वो इम्प्रिंट हो जाते थे उसके, ठीक है। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम जो ये अंगूठी पहनते थे ना, आप सल्लम की वैसे तो आदत नहीं थी, ठीक है, इसी वजह से हमारे अकाबरीन जो है ना वो एक्चुअली अंगूठियां नहीं पहनते। अभी थोड़े दिन पहले हम अपने अजीज के साथ बैठे हुए थे मदीना मुनवरा में, तो एक अंकल आए थे, कोई बड़ी हॉट शॉट किस्म की चीज थे, तो और उनको इंट्रोड्यूस भी किया कि भाई इनके इतने होटल हैं, उनके फलाने हैं, और उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, उनका ये है, उनका वो है। वो आकर के अजी के सामने बैठे, अब मैं भी देख रहा हूँ कि उनके हाथ में ना अंगूठियां, एक दो तीन चार, इधर भी एक दो तीन चार। अजी जी ने और कोई बात नहीं करी, ये क्या है, आप इतनी अंगूठियां क्यों पहने हैं। जी, मैं बस मैं भी ये सोच रहा था कि उनको मैं फिर उतार दूं ऐसे तो बहरहाल, तो नबी अलैहिस्सलाम की आदतें मुबारक तो ऐसी नहीं थी, तो अब ये अंगूठी पहननी पड़ रही थी स्टैम्प लगाने के लिए। तो आप सोच ना, इस अंगूठी को कैसे पहनते थे, अंदर की तरफ इसको रोल कर लेते थे, तो इसका जो नगीना होता था ना जिसके ऊपर ये स्टैम्प, ये बाहर नजर नहीं आता था, ये अंदर छुपा हुआ होता था ऐसे हाथ के अंदर अंदर, ठीक है, दूसरों को डिस्प्ले नहीं कर रहे होते थे कि देखो मैं ऐसे नगीने वाली अंगूठी पहना हूँ ऐसे। बहरहाल, तो ये खतूत जो है वो 6 हिजरी में नबी अलैहिस्सलाम ने फिर भेजे, जिलहज्जा 6 हिजरी। कुछ हजरात ने लिखा है कि 7 हिजरी के अंदर भी ये भेजते रहे, अरे कुछ तो टाइम लगा होगा ना, कभी उसको भेजा, फिर उसको भेजा, फिर उसको भेजा। अच्छा, सबसे पहला खत जो है वो कैसरे रोम के नाम भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किसके हाथों, नबी अलैहि सलाम के एक सहाबी थे दहिया कलबी रजी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है, बहुत खूबसूरत सहाबी थे। और ये भी है किताबों में कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जब आते थे तो इन्हीं की शक्ल में आते थे, ठीक है, दहिया कलबी रज़ी अल्लाह अन्हु की शक्ल में। और रोमन में आपको पता ही है गोरे टट्टे और सिंगल लोग, शायद इसी वजह से जो है दहिया कलबी रज़ी अल्लाह अन्हु को वहां पे भेजा। जी, अंगूठी पे पहने रहते थे, मतलब जाहिर घर कहीं उतार देते होंगे, घर में चले गए उतार दिए, लेकिन जब ऑफिशियली होते थे तो फिर उसको जब पहनते थे तो ऐसे ही पहनते थे, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने दहिया कलबी के हाथ जो है ना वो एक लेटर लिख करके भेजा। उस लेटर के वर्ड्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे अल्फाज, बेहतरीन। कैसे नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया की जो सबसे बड़ी एम्पायर थी उस जमाने में, अच्छा आपको पता है थोड़ा बहुत ये जो हिस्ट्री थी इनकी एम्पायर्स की, ये दो जो सुपर पावर्स थी ना उस जमाने की, तो ये बहुत पुरानी थी। यानी पर्शियन एम्पायर जो है वो 1000 ईयर ओल्ड, 1000 साल से ये चल रही थी दुनिया के अंदर, पर्शियन एम्पायर। उसी तरह से रोमन एम्पायर भी जो है ना, ये भी कोई बहुत ही लंबे अरसे से, 700 ईयर, 600 ईयर से ज्यादा से, ये वही रोमन एम्पायर थी कि जब ईसा अलैहि सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए थे ना, तो उससे पहले ही, कुछ अरसा पहले ही ये एम्पायर जो है वो बनी थी, ठीक है ना। और इनके पास जो है वो पूरा जो ये, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्बी, कल्बी का जो लफ्जी तर्क में, वैसे तो कल्ब कुत्ते से निकला, लेकिन ये इनका नाम, इस वजह से इनका नाम मुझे मेरा नहीं ख्याल कि इस वरना नबी अलैहिस्सलाम चेंज कर दिया करते थे इस तरह के नामों को। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है, ये पूछ रहे थे कल्बी का मतलब क्या है। अच्छा तो ये जो रोमन अम्पायर थी ये ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से पहले बन चुकी थी, और बैतुल मुकद्दस के एरिया के ऊपर भी इनका कब्जा था, ठीक है। और पूरा इस तरह का, इस तरफ का जो यूरोप, रोम है, रोम तो एक पूरा का पूरा मुल्क है ना, अब तो उसका नाम इटली है, लेकिन इटली के अंदर जो है ये रोम की जगह मौजूद है, इसका एक सिटी बन गया अब ये रोम। तो जब ईसा अलैहि सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, उससे आप अलैहि सलाम से पहले कौन थे जो बिल्कुल आपसे पहले वाले नबी, नहीं
यस
ईसा अलैहि सलाम से पहले वाले, यहया अलैहि सलाम, ठीक है। और यहया अलैहि सलाम के वाले थे जकरिया अलैहि सलाम, ठीक है। तो रोमन एम्पायर जो थी वो रूलर्स थे, लेकिन ज्यूज भी वहां पे रहते थे बैतुल मुकद्दस के अंदर, और ज्यूज और रोमन एम्पायर में ना बड़ी दोस्ती वोस्ती हो गई थी उस वक्त, ठीक है। तो जकरिया अलैहि सलाम वाज अ ज्यू, वो बनी इसराइल में से थे ना जकरिया अलैहि सलाम उस वक्त, ठीक है ना। और उनके बेटे याहिया अलैहि सलाम तो अल्लाह के नबी थे, ये ज्यूस को जो है वो रोकते थे बुरे कामों से, तुमने क्या मूसा अलैहि सलाम की जो शरीयत थी तौरात के अंदर जो अहकाम थे, तुमने उन अहकाम को तोड़ना शुरू कर दिया है, झूठ बोलते हो, ये करते हो, वो करते हो। तो इनको जो है ना बड़ी खार आती थी, तो इन्होंने ना बिल आखिर जकरिया अलैहि सलाम को भी शहीद कर दिया, ठीक है ना, शहीद कर दिया, अल्लाह के नबी को शहीद कर दिया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जब यहया अलैहि सलाम आए, तो यहया अलैहि सलाम के खिलाफ भी उन्होंने ऐसी साजिश करी कि एक बादशाह था इन्हीं रोमियों में से, तो उसके जरिए से जो है ना यहया अलैहि सलाम को भी शहीद करवा दिया, ठीक है, बकायदा सर कटवा दिया यहया अलैहि सलाम का, ठीक है। और उसके बाद जब ये ईसा अलैहि सलाम आए, तो ईसा अलैहि सलाम ने फिर अपना काम करना शुरू किया, उनको रोकना शुरू किया और मना करना शुरू किया बुरे कामों से, ईसा अलैहि सलाम के खिलाफ हो गए। और ईसा अलैहि सलाम को भी उन्होंने फिर शहीद करने के लिए जो है ना क्या प्लानिंग करी, कि रोमी बादशाह जो था उस वक्त, उसको जाकर के कहा कि ये जो है ना, ये ईसा है तो हमारे में से, लेकिन इसने जो है ना वो तुम्हारी सल्तनत के खिलाफ प्लानिंग शुरू कर दी है, लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, एंड ही इज प्लानिंग अ रिवोल्ट, ये बगावत करना चाहता है, ठीक है, तो बेहतर है कि तुम इसको गिरफ्तार कर लो और गिरफ्तार करके उसके ऊपर मुकदमा चलाओ और फिर ना मरवा देना किसी तरीके से। तो रोमन्स ने फिर जो है ना वो अपने सोल्जर्स भेजे थे ईसा अलैहि सलाम को गिरफ्तार करने के लिए, और उस मौके के ऊपर फिर अल्लाह ताला ने ईसा अलैहि सलाम को जो है वो आसमानों के ऊपर उठा लिया था, ठीक है। और ईसा अलैहि सलाम को उठाने के बाद फिर उसके बाद जो है वो सिलसिला चलता रहा, लेकिन बिल आखिर जो है ना ये रोमन एम्पायर जो थी, कुछ अरसे के बाद यानी कुछ सालों के बाद जो है, ये रोमन एम्पायर का जो बादशाह था कॉन्स्टेंटीन, ठीक है, वन कॉन्स्टेंटीन अव्वल, ये हो गया ईसाई, ये खुद ही कन्वर्ट हो गया ईसाइयत के अंदर, ठीक है ना, इसने ईसाइयत को कबूल कर लिया। तो उस वक्त से जो है ना फिर ये ईसाई हो गए थे रोमन एम्पायर वाले। इनमें और पर्शियन एम्पायर के दरमियान हर थोड़े दिन के बाद फाइटिंग होती रहती थी, इसके बारे में शायद हमने इस क्लास में पहले ही बात करी है, कभी जो है वो पर्शियंस जीत जाते थे उस फाइटिंग के अंदर, कभी जो है वो रोमन जीत जाते थे, फिर थोड़े अरसे के बाद पर्शियंस जीत जाते थे, फिर उसके बाद रोमन जीत जाते थे, ये चलता रहता था, ठीक है। पर्शियंस की जो आर्मी होती थी वो बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी होती थी, और वो टिपिकली जो है ना वो रोमन्स के ऊपर जब हमला करती थी ना, रोमन उनका मुकाबला नहीं कर पाते थे, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी होती थी पर्शियंस की। जी
नेवी
नहीं, उनके पास नेवी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन उनको जो है ना वो हॉर्स राइडिंग और बाकी टेक्निक्स, उनकी टेक्नोलॉजी बड़ी जबरदस्त थी पर्शियंस की, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से जो है ना वो रोमन्स को शिकस्त देते थे। रोमन्स के पास इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह ज्यादा अच्छी नहीं थी, उनको ज्यादा लड़ना वड़ना इतना अच्छा नहीं आता था, लेकिन उनकी एज जो थी वो ये थी जो कि मुस्तफा ने बताया, ठीक है, कि उनके पास नेवी थी रोमन्स के पास, तो वो ना पर्शियंस को जब भी डिफीट करते थे ना वो अपनी नेवी को यूज करके पर्शियंस को डिफीट करते थे, ठीक है।
रोमन्स
रोमन्स की तादाद भी ज्यादा होती थी आपके ख्याल से? ख्याल वाले तो बात नहीं चलती, कि आपने कहीं पढ़ा होगा, तादाद का तो इतना नहीं पता, नहीं हो सकता हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि रोमन्स की कोई तादाद की एज होती थी, बल्कि उसके बरक्स जो है वो शायद उनकी तादाद का जो है वो काफी खराब भी मामला था। बड़ी ये ना ये जो क्या कहते हैं यूरोप है ना, यूरोप के अंदर जो है ना ये बीमारियां बहुत फैली हैं, बहुत प्लेग और बहुत ऐसे किस्म की अमवाद हुई है, तो ऐसा भी हुआ है कि इन लोगों की तादाद बहुत कम भी हो जाती है, मर मर करके, मर मर करके, इनके पास कोई एलिमेंट तो इनके पास कोई था नहीं ना, उनको कुछ आता जाता था, बिल्कुल ही डार्क एजेस होते थे इनके, तो ये मरते रहते थे बस बुरी तरीके से। खैर, तो अभी रिसेंटली जो जंग हुई थी ना रोमन्स और पर्शियंस के दरमियान, ठीक है, रिसेंटली एक जंग हुई थी जिसका सूर्य रोम के अंदर भी जिक्र है, गलबत रोम, कि रोम जो है ना वो मगलूब हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो एक सारा का सारा एक स्टोरी चली थी मक्का मुकरमा में, हिजरत से पहले की बात थी ना, कि जब रोम के ऊपर पर्शिया ने हमला किया और रोम जो है वो हार गया, पर्शिया जो है वो जीत गया, तो जो कुरैश मक्का थे काफिर वो थे पर्शियंस के दोस्त बने हुए, खाम खा फ्री में दोस्त बने हुए थे, है ना, हालांकि कोई और फायदा तो नहीं था उनको, फ्री में दोस्त बनते हैं ना आप, जैसे हम जो है वो फ्री में जो है वो क्रिकेट मैच होता है हम एक टीम के साथ हो जाते हैं, उन्होंने क्या भाई क्या फायदा मिल रहा है आपको, बस एक टीम को सपोर्ट करना शुरू हो गए। वो क्यों सपोर्ट करना शुरू हो गए, क्योंकि वो जो थे ना वो मुशरिकीन थे, ठीक है ना, यानी बुत परस्त थे लोग पर्शियंस जी। ट्रेड तो इधर भी करते थे, ट्रेड तो उधर भी करते थे, ट्रेड का मसला कोई थोड़ी था, लेकिन वो इस वजह से अपने आप को ज्यादा उनके क्लोज समझते थे क्योंकि वो लोग भी बुत परस्त थे और ये लोग भी बुत परस्त थे, बुतों की पूजा करते थे, ठीक है, और जो मुसलमान थे वो अपने आप को ज्यादा आइडेंटिफाई जो है ना वो रोमन से करते थे, उसकी वजह क्या थी कि रोमन जो थे वो क्रिश्चियंस थे और क्रिश्चियंस जो है वो अहलुल किताब होते हैं और मुसलमान भी अहले किताब थे जी। पर्शियंस आग की भी पूजा करते थे और दूसरे बुत वगैरह भी बनाए हुए थे उन्होंने, सब कुछ करते थे, ठीक है, बहुत ही उनका यानी बेसिकली वो इस किस्म के मुशरिकीन कहलाते थे। रोमन एम्पायर वॉज देयर 400 ईयर्स, पर्शियन एम्पायर फॉर 75 ईयर्स, एंड ग्रीक एम्पायर फॉर 10 ईयर्स। अच्छा खैर, नहीं, इतना तो इतने वो बच्चे नहीं थे वो बेचारे, 75 ईयर्स और 10 ईयर्स, ठीक है, वो बहुत इससे बहुत ज्यादा लंबी उनकी एम्पायर रही है, 1000 ईयर्स की बात होती है। हाँ मल्टीप्लाई कर ले आपने, डिवाइड कर दिया लगता है 10 से। खैर, तो जब जब ये रोमन जो है वो डिफीटेड हो गए थे, तो उस वक्त जो है ना वो इन्होंने काफिरों ने कुरैश मक्का ने जो है ना वो मुसलमानों को बहुत जो है वो टीज करना शुरू कर दिया, देखो अहले किताब तुम भी अहले किताब में से अपने आप को कहते हो, तुम्हारे लोग तो हार गए और हमारे लोग जो है ना वो जीत गए, तो उस वक्त क्या हुआ था, एक बड़ी जबरदस्त चीज हुई थी उस वक्त जो है ना, वो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि नहीं रोम अभी तो हार गया है लेकिन कुछ अरसे के बाद जो है ना वो रोम जीत जाएगा, ठीक है ना, और कुरान मजीद की आयत नाजिल हो गई, रोम जीत जाएगा, ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ना उनको तो यानी उनका यकीन जितना था उतना तो किसी और का यकीन नहीं हो सकता, तो उन्होंने जो है ना फिर किससे, वलीद बिन उमैया से, एक बहुत बड़ा सरदार था कुरैश मक्का था, कुरैश मक्का का, उससे जो है ना वो शर्त लगा ली, ठीक है, कि कुछ अरसे के बाद जो है ना वो रोम जीत जाएगा, तो उसने कहा कि अच्छा तुम्हें कैसे पता, तो मैं बता रहा हूँ जीत जाएगा, ठीक है, उसने कहा अच्छा शर्त लगाते हो, इन्होंने कहा हाँ, उस जमाने में शर्त जो है ना वो हराम नहीं हुई थी इस तरह से शर्त लगाना, तो उन्होंने कहा हाँ शर्त लगाता हूँ, क्या शर्त लगाता हूँ, 100 ऊंट, ठीक है ना, अगर जो है ना मेरी बात सच होगी ना तो तुम मुझे 100 ऊंट दोगे, और अगर तुम्हारी बात सच हुई यानी पर्शियन जीत जाएंगे दोबारा तो फिर मैं तुम्हें 100 ऊंट दे दूंगा, उसने कहा चलो ठीक है शर्त लगा ली, ठीक है ना, और उसके बाद जो है वो कुछ अरसे के बाद जब दोबारा वॉर हुई तो रोमन जो है जीत गए जी, बेटिंग हाँ बेटिंग वर्ड्स के लिए भी यूज होता है, ठीक है, और ये चीज जायज नहीं है, तो उस वक्त ये हुक्म नहीं आया था, तो खैर शर्त लगा ली थी। बहरहाल तो हुआ ये कि वाकई दोबारा से लड़ाई हुई इन दोनों की, और रोमन जो है ना वो जीत गए, अबू बकर सिद्दीक रहता ना अपनी शर्त तो जीत गए, लेकिन फिर उस वक्त जो है वो शर्त के खत्म होने का हुक्म आ गया था, फिर वो किसी और तरीके से उसको सेटल किया था। अच्छा, तो जो रोमन बादशाह था जो कि क्रिश्चियन था, कैसर ए रोम, तो इसने क्या किया कि इसने जो है ना वो बाकायदा खुदा का शुक्र अदा किया, खुदा उन्दे कुद्दूस जैसे क्रिश्चियंस कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ना अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कि अल्लाह ताला ने मुझे फतह अता फरमाई है, ठीक है, ये जो है शाम का एक बड़ा मशहूर शहर है हमस, हमस में ये वहां पर था, वहां से ये पैदल चल करके बैतुल मुकद्दस आया, ठीक है। ये लोग बैतुल मुकद्दस को ईलिया शहर कहते थे, ईलिया का मतलब होता है खुदा का शहर, ठीक है। तो ये हमस से पैदल चल करके बादशाह जो है पता नहीं कितने हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स होगा वो रास्ता, ये पैदल वहां पर आया था, ठीक है ना, और ये बैतुल मुकद्दस में मौजूद था। तो दाहिया कल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने अपना खत दिया ना, तो वो खत लेकर के बैतुल मुकद्दस आए, क्योंकि वो पता था कि अभी इस वक्त यहाँ बैतुल मुकद्दस को इनका कैपिटल सिटी नहीं था कि यहाँ पे बादशाह होता था, ये तो आया हुआ था यहाँ पर पिलग्रिमेज करने के लिए। ये लोग इनका हज कहाँ होता था, ये बैतुल मुकद्दस में होता था, ठीक है ना। तो गोया के कोई मुसलमान जो है वो कहे कि भाई मैंने हज करना है और मैं अल्लाह ताला को बहुत राजी करना चाहता हूँ, तो मैं ना अपने घर से निकलूंगा और पैदल जाकर के हज करूंगा। बड़ी बात है ना, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हर साल, हजरत ने किसी वाक्य भी बताया था कि यमन से पैदल चल करके वो हज करने के लिए आते हैं, पता नहीं 70 साल तक ऐसा करते रहे उस्ताद। तो खैर, तो ये दहिया कल्बी जो है वहां पर पहुंचे और अपने एक जानने वाले अमीर बुसरा, बुसरा भी एक शहर है शाम का, तो उसका जो अमीर था ना, तो उसके रेफरेंस से जो है ना फिर कैसे रोम के दरबार में पहुंचे, क्योंकि बड़े बादशाह के दरबार में पहुंचना भी कोई आसान काम तो नहीं होता। वहां पे पहुंचे और खत देने से पहले ना उन्होंने एक छोटी सी तकरीर करी, ठीक है। उस तकरीर में उन्होंने कहा कि ए कैसर रोम, जिसने मुझे अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना सफीर बना करके आपके पास भेजा है ना, वो आपसे भी बेहतर है, ठीक है। इतने बड़े बादशाह के सामने इस तरह से बात कर रहे हैं, आपसे भी बेहतर है, और जिस जाते बाबरकत ने उनको पैगंबर बनाकर भेजा है वो सबसे आला और राफे है, यानी अल्लाह ताला जिन्होंने उनको पैगंबर बना के भेजा वो तो सबसे बड़ा है, लिहाजा मैं जो कुछ भी कहूंगा ना आप जरा तवज्जो से और तवाजो से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है, और इखलास से उसका जवाब दीजिएगा। अगर आप तवाजो से मेरी बात नहीं सुनेंगे, हम ह्यूमिलिटी के साथ मेरी बात नहीं सुनेंगे ना, तो आप उसको समझ ही नहीं सकेंगे मेरी बात को, ठीक है। और अगर आपके जवाब के अंदर इखलास नहीं होगा तो फिर आपका जवाब जो है ना वो यानी अच्छा जवाब नहीं होगा, आदिलाना जवाब नहीं होगा, ठीक है। तो कैसर रोम ने जो है ना वो उनको कहा कि अच्छा ठीक है फरमाइए, ये भी यानी एक रिलीजियस आदमी था तो बादशाह इतनी बड़ी सल्तनत का, लेकिन काफी जैसे कि उसने भी पैदल पिलग्रिमेज किया था अल्लाह के शुक्र अदा करने के लिए। तो दाहिया कल्बी ने रज़ी अल्लाह ने उनको कहा कि आपको उसको कहा कि आपको मालूम है कि हजरत मसीह बिन मरियम नमाज पढ़ा करते थे, तो उसने कहा कि हाँ मुझे मालूम है कि वो नमाज पढ़ा करते थे, यानी बाकायदा एक जो एक्ट ऑफ वर्शिप जिस तरह की नमाज उस तरह पढ़ते था। तो दहिया कर्मी ने कहा कि मैं आपको उस जात की तरफ बुलाता हूँ कि जिसके लिए हजरत मसीह अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा करते थे और जिसके सामने सजदा किया करते थे, ठीक है। और इस तरीके से जो है ना वो उन्होंने छोटी सी एक तकरीर कर दी पहले इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम को, और फिर उसके बाद जो है वो लेटर जो है वो कैसर रोम के हवाले किया, हाथ में दिया। कैसर रोम ने उस खत को पहले अपनी आंखों से लगाया, है ना, जैसे होता है ना किसी चीज की इज्जत और इकराम करने के लिए, उसने अपनी आंखों से उस खत को पहले लगाया, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ना वो अपने सर पे रखा और फिर उसके बाद जो है वो उसको बोसा दिया उस खत को, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको खोल करके पढ़ा और फिर कहा कि मैं सोच के कल जवाब दूंगा, कल सोच करके तुम्हें जवाब दे, ठीक है। अच्छा, खत में लिखा था क्या था ये हम पढ़ करके फिर आज की क्लास या दो चार और बातें करके क्लास खत्म कर देते हैं, बाकी इंशाल्लाह तफसील इस बात है कि अगली क्लास में। तो खत में नबी अलैहि सलाम ने ये लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान है और रहीम है, मिन मुहम्मदिन अब्दुल्लाह व रसूलिही इला हिरकल अजीम रोम, ठीक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हिरकल की तरफ जो कि रोम का अजीम है, अजीम का मतलब बादशाह बड़ा, ठीक है, उसकी तरफ है, सलामुन अला मन तबा इल खुदा या तब तबाअल हुदा, ठीक है, सलामती है उसके ऊपर कि जिसने हिदायत की इत्तिबा कर ली, जिसने हिदायत को मान ली, तुम्हारे ऊपर सलामती नहीं है। अगर तुमने हिदायत को नहीं माना तुम्हारे ऊपर सलामती नहीं है, सलामती तो उसके ऊपर है जिसने हिदायत को कबूल कर लिया, उसकी इत्तिबा कर ली, ठीक है। अम्मा बात, फिर उसके बाद अमीर सुन, तो बाकी का हम तर्जुमा पढ़ लेते हैं कि मैं तुमको दावत देता हूँ उस कलमे की जो इस्लाम की तरफ लाने वाला है, यानी कलमे तैयबा, मैं तुम्हें कलमे तैयबा की तरफ दावत देता हूँ, इस्लाम ले आओ, असलिम, ठीक है, सलामत रहोगे, तस्लिम, तो तुम पीस में रहोगे, सलामती में रहोगे अगर तुम इस्लाम ले आओगे, ठीक है। और फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारा अजर दोहरा कर देंगे, तुम्हें डबल सवाब मिलेगा, जैसे कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं उलाइका युतउना अजरहुम मरतैन, ये जो अहले किताब है ना, अगर ये इस्लाम ले आए तो उनको डबल सवाब मिलेगा, किस बात का, कि वो पिछले नबी के ऊपर भी ईमान रखते थे और जो इस वक्त प्रेजेंट नबी है उसके ऊपर भी ईमान लेकर के आ गए, इनका डबल सवाब हो जाएगा, तो तुम्हारा भी डबल सवाब हो जाएगा, तो तुम भी अहले किताब में से हो। बस अगर तुम इस्लाम से रूगरदानी करोगे, यानी मेरी बात नहीं मारोगे ना, तो फिर तुम्हारे जो फॉलोअर्स है ना, तुम्हारे जो रियाया है, अवाम है तुम्हारी, उनके भी गुनाहों का अजाब तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हें फॉलो करते हैं, अगर तुम इस्लाम ले आओगे ना, वो भी पीछे पीछे इस्लाम ले आएंगे, अगर तुमने जो है मुखालफत करी ना, तो वो भी तुम्हारी देखा देखी जो है वो भी इस्लाम की मुखालफत करेंगे, और फिर यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कुफर एज वेल। यानी ये नहीं है कि वो जन्नत में चले जाएंगे और तुम जहन्नुम में चले जाओगे, डबल अदाब, नहीं, उनको तो अदाब मिलेगा ही, लेकिन उनको वन टाइम अदाब मिलेगा, तुम्हें डबल अदाब मिलेगा, उनका भी अदाब तुम्हारे ऊपर, ठीक है। ए अहले किताब, आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान में कॉमन है, हम भी वही बात करते हैं, तुम भी वही बात करते हो, वो क्या है कि अल्लाह के सिवा किसी चीज की इबादत ना करें, ठीक है ना। क्रिश्चियंस एंड जूस जो हैं प्रिंसिपली स्पीकिंग इस बात से हमसे एग्री करते हैं कि अल्लाह ही खालिक है, मालिक है, और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और ना अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक गर्दानेंगे, और अल्लाह के सिवा आपस में एक दूसरे को अपना रब और माबूद ना बनाएंगे, ठीक है। अजीब बात कि अल्लाह के साथ जो है ना वो किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी जरा मुश्किल बात है ये कि आपसे सलम ने ये नहीं कहा, ये नहीं लिखा उसको कैसर रोम को कि बुतों को माबूद नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपसे सलम को पता था कि ये दिस ऑडियंस इज डिफरेंट है ना, ये कुफारे मक्का नहीं है, तो ऑडियंस के हिसाब से बात करनी चाहिए ना भाई, आप लोग हैं तो हम आपसे आपके लेवल की बात करें, आपके जो आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज है वो बात करें, ठीक है ना। आंटियों से जो क्लास के अंदर बात करते हैं वो वाली बात आपसे तो नहीं करेंगे ना, और ना आपसे जो बात करते हैं वो आंटियों से क्लास के अंदर बात करेंगे, भाई ऑडियंस के हिसाब से बात करनी चाहिए ना। देखिए नबी अलैहिस्सलाम ऑडियंस के हिसाब से बात कर रहे हैं, जैसे सुनने वाले लोग हैं, तो आपसे सलम ने इसको ये नहीं कहा कि तुम बुतों को शरीक नहीं ठहराओगे, क्योंकि ये को लोग थोड़ी बुतों को शरीक ठहराते हैं, आपसे ने इसको ये लिखा कि एक दूसरे को तुम खुदा का शरीक नहीं ठहराओगे, क्यों, इसलिए कि जो मुसलमान लोग होते हैं ना और अहले किताब लोग जो होते हैं ना, ये बुतों की पूजा नहीं करते, ये इंसानों की पूजा करते हैं, ये इंसानों को वो इंपॉर्टेंस दे देते हैं जो कि अल्लाह ताला को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो वही नबी अलैहिस्सलाम ने उनका कि एक दूसरे को अपना रब और माबूद नहीं बनाएंगे, ठीक ना। अच्छा, बस अगर वो इस्लाम कबूल ना करें तो आप कह दीजिए कि तुम गवाह रहो कि हम मुसलमान हो चुके हैं, यानी अल्लाह के हुक्म के ताबे हो चुके हैं, ठीक है। यानी अगर हमारे लोग जो है मुसलमान नहीं भी होते ना, तो तुम उनको बता देना कि भाई हम तो मुसलमान हो चुके हैं, ठीक है। तो ये खत जो है वो नबी अलैहिस्सलाम ने दहया कल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथों कैसर रोम तक पहुंचा दिया। अब कैसर रोम ने जो है वो एक दिन का जो है ना वो टाइम ले लिया उनसे, कहा अच्छा मैं कल सोच करके बताऊंगा। जी
अभी उनके रूम की
आप अभी पहले आपने क्या कहा कि अभी अमीर सुल्तान रोम के दोस्त थे,
दोस्त
नबी अलैहिस्सलाम रोम के दोस्त नहीं थे कभी भी, वो तो जब जब दोनों की लड़ाई होती थी ना, पर्शियंस की और रोमन्स की, तो उस वक्त जो है ना वो बस मुसलमान समझते थे कि हम अहले बैत के ज्यादा, अहले ये किताब के ज्यादा करीब हैं, तो वो उनको सपोर्ट कर रहे होते थे, ऐसी बस बातचीत में सपोर्ट करें। तो जैसे मैं बैठ करके आपके अच्छा जी वो यूक्रेन और यूएसए क्या रूस की जंग हो रही है, ठीक है ना, तो मैं जो है ना वो रूस को सपोर्ट करता हूँ, आपके मैं जो है ना यूक्रेन को सपोर्ट करता हूँ, तो भाई इससे कोई दोस्ती को थोड़ी हो जाती है। मेरा कोई रूस जो है मेरा दोस्त को थोड़ी है ना, आपका दोस्त जो है वो यूक्रेन है, ऐसे ही बैठे हुए आपसे बात कर रहे हैं कि अच्छा भाई मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, आपके मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो बस ऐसे ही था, कोई दोस्ती वोस्ती कोई नहीं थी, ठीक है ना। और जो वहां पे था, वहां पे तो यानी गज़वाए खंदक के अंदर तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बता दी थी कि आप फतह करेंगे, आपकी जो लोग होंगे ना उम्मत वाले, वो पर्शिया को भी फतह करेंगे, रोम को भी फतह करेंगे और यमन को भी फतह करेंगे वगैरह। एक अलग डिस्कशन होगी। अच्छा, तो इसने क्या किया कि सोचने का जो एक टाइम एक दिन लिया ना, तो उसमें ना इसने अपने दरबार के लोगों से कहा कि भाई ये लोग जो दहिया कल्बी जो आए हैं ना मेरे पास, तो ये जहां से आए हैं ना मक्का मुकरमा से या मदीना मुनव्वरा से अरब से आए, तो वहां के कोई लोग जो है ना जो के इस नए पैगंबर जो आए हुए हैं ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने आप को पैगंबर कह रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोग लेकर के आओ मेरे पास कि जिनसे मैं उनके बारे में पूछ सकूं, है ना, कोई बैतुल मुकद्दस में ऐसे लोग आए हुए वहां मक्का मुकरमा से, ठीक है ना, जहाँ के ये रहने वाले हैं, जहाँ पे ये पैदा हुए, तो अगर ऐसे कोई लोग हैं ना तो उनको लेकर क्या, आई वॉन्ट टू एस्क अबाउट है, पूछना चाहता हूँ कि ये हैं क्या। तो उस वक्त जो है ना वो कुदरतन अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन जो कि उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, वही वहां पे मौजूद थे बैतुल मुकद्दस के अंदर अपने काफले के साथ आए हुए थे तिजारत करने के लिए, ठीक है। तो कैसर के जो आदमी थे ना वो वहां से जाकर के अबू सुफियान को लेकर के आ गए, आपको कैसर बुला रहे हैं, ठीक है ना, तो वो लेकर के दरबार में आ गए, और उस वक्त दरबार के अंदर सारे जो है ना वो कैसर भी मौजूद था, उसके जो है पूरे दरबारी मौजूद थे, और साथ साथ ना इनके दरबार के अंदर इनके जो प्रीस्ट होते थे ना बड़े बड़े जो इनके क्या कहते हैं रिलीजियस स्कॉलर्स और प्रीस्ट वगैरह वो सारे वो भी मौजूद थे सारे यहाँ पे, ठीक है। तो फिर जो है ना वो कैसर और अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की डिस्कशन शुरू हुई। अच्छा, कैसर ने कहा कि तुम में से सबसे सीनियर कौन है, तुम्हारा सरदार कौन है, तो अबू सुफियान ने कहा, लोगों ने कहा ये हमारे सरदार ये सबसे बड़े हैं, तो कैसर ने कहा कि अच्छा तुम जो है ना वो आगे आ जाओ और बाकी जो तुम्हारे साथी है ना वो पीछे रह जाए। इसमें भी कैसर की जो है ना बड़ी इंटेलिजेंस थी कि उसने आगे बुला लिया था कि ताकि जो है ना वो जब मैं उनसे कोई सवाल करूं ना तो ये खुद अकेले मेरा जवाब दे सके, ये नहीं हो कि पीछे से कोई उनको खुसर पुसर करके जो है वो मशवरे दे रहा हो और अपनी तरफ से कोई आइडियाज दे रहा हो, ठीक है ना, आगे अलग से बुला लिया और फिर उनसे जो है ना वो कॉन्वर्सेशन करनी शुरू करी, और ये इंतहाई इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, बड़ी जबरदस्त बातें हुई कैसर और अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला के दरमियान, वो इंशाल्लाह हम आगे क्या पढ़ेंगे। किसी को कोई सवाल है ऑनलाइन या ऑन साइट तो वो अभी पूछ लें। ठीक है, तो क्लास खत्म करते हैं अल्लाह ताला से दुआ मांगते हुए कि अल्लाह ताला हमें नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत भी बहुत शदीद अता फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसना के मुताबिक अपनी जिंदगी में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दुआवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।